शांति। आज की इस बेहद की सभा में आप सभी यज्ञ के जिम्मेवार विशेष आत्माएं उपस्थित हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा टोटल यज्ञ की स्थापना के लिए निमित्त जिम्मेवार बने, वो भी युगल मुरत परिवार सहित शिव बाबा के प्रति समर्पित हुए, तो ऐसा ही आप सबके लिए भी कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स और ब्रह्मा बाबा की तरह ही लौकिक के साथ इस अलौकिक यज्ञ को संभालने के लिए जिम्मेवार ऐसे विशेष आप सभी रत्न है। ड्रामा में सेवा के क्षेत्र में आप सबका विशेष रोल है। बाबा भी सदा कहते हैं कि महामंडलेश्वरों सन्यासियों को भी चैलेंज करने वाले कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम विकारों से अलिप्त रह सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबका जीवन है। और आप सबको पता हो कि सर्वश्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को माना जाता है। जैसे कोई शास्त्र प्रमाण देंगे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो शास्त्र प्रमाण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा जीवन ही देख लो, हम गृहस्थ में रहते भी विकारों से अलिप्त रहते हैं, उनका प्रैक्टिकल सबूत है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस अलौकिक जीवन में भगवान के कहने पर आप सबने प्राप्त की है। ये बात बताती है कि आप बहुत शक्तिशाली, बहुत ही विल पावर वाली आत्माएं हैं। कुमार कुमारियां पवित्र हैं, ये अपने आप में बाल ब्रह्मचारी रहने का उनका सौभाग्य है, लेकिन उनको भी इतना शक्तिशाली नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास अपनी धारणाओं से स्लिप होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन सन्यासी जिसके लिए कहते रहे कि ये माया का द्वार है, बाबा ने आप सबके निमित्त वो कार्य करके दिखाया कि हम साथ रहते भी बिल्कुल आत्मभिमानी रह सकते हैं, न सिर्फ पवित्र, न सिर्फ ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्माचारी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं था, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ देह के सर्व संबंधों से लौकिक भाव बाबा ने समाप्त कर दिया था। पवित्र रहना एक चीज है और संबंध का भाव भी न रहे, वो रग भी न जाए, इतना आत्मभिमानी बनकर ऊपर उठ जाना, ये एक विशेष बात थी बाबा में। तो आप सब भी वही पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसी बात के एग्जाम्पल बनने के लक्ष्य से चल रहे हैं कि न सिर्फ पति पत्नी के संबंध में पवित्रता, लेकिन वो दैहिक भाव भी नहीं, देह संबंध की दृष्टि भी नहीं, बिल्कुल आत्मिक अलौकिक दृष्टि, एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के साथ कैसा व्यवहार करता है घर में, उसी नजर से एक दो को चलना और उसी मर्यादा से चलना, ये आप सबका लक्ष्य है। तो अपने आप में आप विशेष शक्तिशाली आत्माएं हैं। हम निमित्त बहने, समर्पित भाई बहने लोगों को ज्ञान देते हैं तो अक्सर हम लोगों को तो वो यही बताते हैं कि भाई आप तो समर्पित हैं, विद्यालय में रहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो ग्रस्त में रहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हमारा भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम किसका एग्जाम्पल देते हैं? आप सबका एग्जाम्पल देते हैं कि चलो भाई हमारी बात छोड़ो, पर इनको पूछो, इनको देख, है ना। इसलिए आप शक्तिशाली है, विल पावर है कि साथ रहते भी इतना डिटैच रहना। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा ऐसे ही एक युगल से मिल रहे थे छोटे हॉल में मधुबन में, और बहुत शुरू की बात है, 71-72 की बात है। तो बाबा ने उस युगल को पूछा कि सिंगल हो या डबल हो, अब क्या जवाब दे। सिंगल कहे तो भी रॉन्ग हो जाता था क्योंकि दोनों थे, डबल डबल कहे तो भी पता नहीं राइट रहेंगे या नहीं। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आपस में सिंगल हो, मेरे साथ डबल हो। आपस में तुम सिंगल हो, आपस में डबल नहीं समझना, आपस में सिंगल हो, मेरे साथ डबल हो। योगी बनना माना, बाबा के साथ युगल मुरत बन जाना, बाबा को साथी बना लेना। हम सिर्फ बाबा को याद नहीं करते हैं, बाबा को साथ अनुभव करते हैं, है ना। याद तो दूर रहने वाले को भी हम करते हैं, इसलिए सिर्फ याद नहीं करना है लेकिन बाबा का साथ, कि वो मेरे साथ है, हरदम मेरे साथ है। तो बाबा के साथ हम डबल हैं। तो बाबा ने, क्योंकि आप सबके अंदर एक नेचुरल जिम्मेवारी उठाने का गुण है। देखो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से शादी करता है और परिवार बनाता है और उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी उठाता है। मीन्स आपके अंदर जिम्मेवारी उठाने का एक स्वाभाविक गुण है। इसलिए अलौकिक जन्म में अब सिर्फ लौकिक नहीं लेकिन यज्ञ के लिए भी विश्व सेवा के कार्य के लिए भी आप सभी जिम्मेवार हैं। बाबा के हर प्रकार के हैंड्स है सेवा में, लेकिन उसमें सबसे उपयुक्त योग्य आप सभी हैं, क्योंकि कुमार कुमारियां सेवा करते हैं तो लोग अक्सर कह देते हैं कि आपको क्या पता, आपने थोड़ी दुनिया देखी, आपसे ज्यादा हमने दीपावली देखी है करके वो उसके बाद की वैल्यू नहीं रखते हैं। अच्छा, जो सिंगल भाई बहने चलते हैं, माताएं या अधर कुमार, वो भी एक योग्य एग्जाम्पल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि एक एक तरफ चल रहा है, दूसरा दूसरी तरफ चल रहा है, मिलके नहीं चल पाए हैं। चाहे खुद का कोई कसूर हो या ना हो, लेकिन हिसाब किताब तो कहेंगे ना, जिसके कारण दोनों नहीं चल रहे हैं। इसलिए वे योग्य सफल एग्जाम्पल नहीं माने जाते हैं, लेकिन आप सभी दोनों जो ज्ञान में चलते हैं वो दूसरों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, बाबा की सेवा के बहुत योग्य हैंड है, और इसलिए यज्ञ माना मधुबन से लेकर जिस भी जोन सेंटर उप सेंटर पाठशाला से आप कनेक्टेड हैं, यज्ञ के जवाबदार बनने के लिए सबसे उत्तम आप सभी हैं। इसलिए बाबा ने जो यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक की बात कही है, वो आप सभी भी अपने लिए भी अंडरलाइन करके रखना कि हम यज्ञ के लिए रक्षक हैं और विश्व की आत्माओं को संदेश पहुंचाने के हिसाब से भी आप जवाबदार हैं। तो यज्ञ रक्षक, यज्ञ माना क्या, बाबा का ये विशाल बेहद का कारोबार बाबा के द्वारा विश्व परिवर्तन का जो ये भगीरथ कार्य चल रहा है, देश विदेश में हजारों स्थानों पर लाखों भाई बहनों के द्वारा विश्व की करोड़ों अरबों आत्माओं के लिए, तो इस बेहद के सेवा कार्य को, इस विद्यालय को यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ये पवित्र कार्य है और मानवता की सेवा का कार्य है, इसलिए इसको हम यज्ञ कहेंगे। तो इस यज्ञ को स्वयं भगवान ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। बाबा कहते हैं कि मैं शेठ हूं इस यज्ञ को रचने वाला, और इस यज्ञ को ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने स्थापन किया, और हमारी दादियों ने और दादाओं ने अपने जीवन के 72 वर्षों की त्याग तपस्या और अथक सेवा के फल स्वरूप इस यज्ञ का पालन पोषण और विकास किया। बाबा ने रचा लेकिन इसको बेहद का स्वरूप दिया हमारी इन दादियों ने और दादाओं ने। आप सोचो जीवन के 72 वर्ष कोई छोटी चीज नहीं, पूरी जिंदगी जिन्होंने इस यज्ञ को चलाने में संभालने में उसका विकास करने में उन्होंने लगा दिया है। अब वो समय आ चुका है जब हमारी दादियां और दादाएं हमें कहते हैं, जैसे वो गीत में गाया हुआ है, जिन्होंने कुर्बानी देकर आजादी देश में लाई, उन्होंने ये कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। तो ये हमारी दादियां हम सब भाई बहनों को कहती हैं कि हम अनेक तूफानों विघ्नों से पार करके इस यज्ञ को बेहद का बना करके आपके सामने लाए हैं। अब आप सबका काम है इस यज्ञ की संभाल करना। तो तैयार है ना सभी? हम बिल्कुल जिगर से दादियों को बाबा को दादाओं को कहेंगे कि जैसा आपने संभाला है ऐसा हम भी संभालेंगे। चाहे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, जब तक बाबा का कार्य संपन्न नहीं होगा हम इस यज्ञ के साथ साथ हैं। हमारा जो कुछ है वो भी इस यज्ञ की सेवा में है। हमें इस यज्ञ की क्या रक्षा करनी है? ये हम सबको निश्चय है कि स्वयं भगवान का यज्ञ है, अपने आप में ही सुरक्षित है, बल्कि अनेकों को पनाह देने वाला, अपनी छत्र छाया में सलामत रखने वाला ये यज्ञ है। लेकिन और बाबा ने कहा भी है, यज्ञ अमर है, चलता है और चलता ही रहेगा। इसमें कोई बात किसी से भी आ नहीं सकती है क्योंकि ये सर्वशक्तिमान का यज्ञ है। इसमें विघ्न डालने वाले चाहे अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है या ज्ञानी है, वो स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे, लेकिन इस यज्ञ को कोई आंच आने वाली नहीं है ना, क्योंकि ये भगवान का यज्ञ है। जिन्होंने न समझ करके भी कई बार बाहर के लोग हमारे मूल बातों को, मूल सत्य ज्ञान को नहीं समझते हैं, लेकिन हम भाई बहनों के गलत कर्मों को देखकर या हमारे द्वारा जो कभी डिससर्विस हो जाती है वो देखकर कोई अखबार वाले, टीवी वाले अगर डिससर्विस की पब्लिसिटी करेंगे तो भी वे सब भी उनके लिए भी वो दिन आएगा, वो क्षण आएगी जब वे पश्चाताप करेंगे और रियलाइज करेंगे कि हमने बरोबर जाना नहीं, समझा नहीं और दूसरों की बातों को लेकर डिसर्विस कर दी। वो जरूर पश्चाताप करेंगे, क्योंकि कार्य सत्य है, साक्षात भगवान का है। इसलिए मैं, आप और कोई इसमें बुरा नहीं कर पाएगा। हम अपना खराब कर देंगे, लेकिन यज्ञ का कोई भी ना नाम बदनाम कर सकेगा, न कुछ नुकसान पहुंचा सकेगा। ये हम सब ब्राह्मण भाई बहनों को अंदर से पक्का निश्चय होना चाहिए। लेकिन हमें भगवान ने ये भाग्य दिया है कि कार्य भल मेरा है, लेकिन मैं करूंगा तुम्हारे द्वारा। इसलिए हम बाबा के बच्चे, जिसको निमित्त बनकर जिम्मेवारी उठाने का कार्य भगवान ने दिया है, तो जरूर हम चिंतन करेंगे कि इस यज्ञ को हम कैसे संभालें, कैसा बनाकर रखें। मुख्य रूप से पांच बातों का हमें जरूर ध्यान देना है। सबसे पहली बात, हमारा ये यज्ञ किस बात के लिए प्रसिद्ध है, और अक्सर यज्ञ किस लिए रचे जाते हैं। उस दृष्टि से अगर आप इस विषय पर चिंतन करेंगे, तो जो भी मेहमान बाबा के घर में आते हैं, वे घर के प्रवेश द्वार में पांव रखते ही सबसे पहला अनुभव क्या करते हैं, क्या करते हैं कि यहां एकदम अलौकिक शांति है। दुनिया के निगाहों से, जुबानों से पर ये एक अनोखी दुनिया है, और बहुत ही मानसिक शांति, आत्मिक शांति का वे अनुभव करते हैं। वे सिर्फ यहां के प्राकृतिक सौंदर्यों से, बाग बगीचों और मकानों से खुश नहीं होते। प्राकृतिक शांति तो पूरे आबू में है, लेकिन बाबा के इस दर पर आकर अलौकिक शांति का वो अनुभव करते हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का अनुभव करते हैं। तो हम सब ब्राह्मण भाई बहनों का ये कर्तव्य है कि हम चाहे मधुबन में हैं, किसी भी सेंटर के हैं, पाठशाला के हैं, सब सेंटर के हैं, या घर में रहते हैं, यज्ञ की अलौकिक शांति बनाए रखना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और इसलिए शांति के वाइब्रेशंस फैले रहे, हमारा यज्ञ शांति कुंड अनुभव हो, उसके लिए आत्मभिमानी स्थिति की साधना हमें हरदम करनी है। जो आज भी बाबा ने बार बार कहा है कि ज्ञान रत्नों की धारणा उनको होगी जो आत्मभिमानी रहेंगे। इवन बाबा की याद में भी वही रह सकेगा जो आत्मभिमानी रहेगा। इसलिए जिस भी सेंटर में हम जाते हैं, हम और शरीरीपन के देहभान से न्यारा रहने की आत्मभिमानी स्थिति की बहुत साधना करते रहे। चलते फिरते ये नहीं कि बैठने की बात नहीं है, लेकिन एक देह से डिटैच रहने की हमें एक नेचुरल प्रैक्टिस हो जाए। इससे ही ये अलौकिक शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। योग की लाइट और माइट ऐसी हम फैलाएं जो हमारा घर, हमारा सेंटर, हमारा जोन, हमारा मधुबन लाइट का किल्ला बन जाए। व्यक्तिगत हम सब उसकी जिम्मेवारी समझे और उस हिसाब से बाबा की और एक सूक्ष्म बात हम ध्यान में रखें। बाबा की साकार मुरली के ज्ञान काल में, माना लौकिक दुनिया में, तो अशांति फैलाना असुरों का काम कहा जाता है, लेकिन इस ईश्वरीय जीवन के अंदर बाबा इतनी सूक्ष्मता हमें कहते हैं कि अशांत होना भी असुरों का काम है। इसलिए मुझे इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक परिवार संगठन में किसी भी कारण से अशांत नहीं होना है, असंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जहां हम असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, वहां अशांति पैदा होती है। और स्वाभाविक है कि हम ब्राह्मण ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, चाहे बाबा से, बाबा के हम बच्चे आपस में, बाबा के घर से, बाबा के सेवा कार्य से, हमें कोई भी कारण से असंतुष्ट नहीं होना है, अशांत नहीं बनना है। मुझे किसी भी कारण से अपनी शांति की स्थिति को गंवाना नहीं है। बातें आएंगी, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं। दुनिया तो सिंगल प्रवृत्ति मार्ग की है, हमारे ऊपर डबल प्रवृत्ति की जवाबदारी है, लौकिक और अलौकिक। इसलिए बातें आएंगी, ऊपर नीचाई होंगी, नंबरवार सब है, कारण कोई भी हो, मुझे शांति से, शीतलता से कार्य करना है। ये हम अपने जीवन का एक कार्य करने की पद्धति निश्चित कर ले। कोई कुछ भी बोले, करे, कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपनी शांति की शीतल स्थिति से ही कार्य करना है। मुझे इस बाबा के घर में कभी भी अशांति के वाइब्रेशंस फैलाने का काम नहीं करना है। बस चाहे मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी ना भी मिले, कोई बात। दूसरी बात कि कई बार हम अशांति नहीं फैलाते हैं। इतने तो ज्ञानी बने हैं, इतने तो समझदार बने हैं कि हम अशांत नहीं होते हैं, न अशांति फैलाते हैं, लेकिन कई बार हमारा चलना उठना बैठना इस प्रकार का होता है कि कई बार हम शांति भंग कर देते हैं, अशांति नहीं फैलाते हैं, अशांत नहीं रहते हैं, लेकिन शांति भंग का काम जाने अनजाने हमारे से हो जाता है। जैसे कि हम धड़फड़ करके चल करके आते हैं, हमारे चप्पल जूतों के इतने आवाज होंगे कि योग में बैठने वाले डिस्टर्ब हो जाते। कई बार हम देरी से आते, बीच में आके ऐसे धम करके बैठेंगे, हमारे आसपास वाले चार पांच हिल जाएंगे, उसका योग टूट जाएगा। तो बाबा मम्मा सिखाते थे ना, मम्मा कहती थी कि ऐसे चलो कि धरती को भी दुख ना हो, माना धम धम करके नहीं, फरिश्ता बन के शांति से लाइट होकर। और बाबा कहते थे कि जब आप क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, उस समय एक क्षण बाहर रुक कर अपनी योग की ऊंची स्थिति में जाकर फिर हॉल में प्रवेश करो, ताकि वाइब्रेशंस भी न हिले, वायुमंडल भी हमारे कारण नीचे नहीं आना चाहिए। कई बार हम इस बातों के लिए अटेंटिव नहीं होते, ये दरवाजे तक अंदर आ जाएंगे तब तक बातें हम करते रहते, हम भूल जाते हैं कि सब बाबा की याद में बैठे हैं। ये योग का कमरा है, ये पढ़ाई का हॉल है, हम भूल जाते हैं। अनावश्यक कोई बूढ़े हैं, बीमार है, वो अलग बात है, पर अनावश्यक हम यहां तक गाड़ियां लेके आएंगे और उतर के हॉल में आएंगे, क्यों भाई? हम 10 मिनट चल के नहीं आ सकते? आज हमारे बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए गाड़ियां चलती हैं, वो भल चले, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम 80% भाई बहने तो ठीक ठाक है, हम चल के शांति से आ सकते हैं ना। पर कई बार देखा देखी कि हम भी कुछ हैं, तो हम यहां दरवाजे तक गाड़ी लेके आते। देखने में ये सामान्य बात है, लेकिन आप अनुभव से बताइए कि इससे डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता है। इसलिए हम शांति भंग करने का काम भी नहीं करें, न चप्पल का आवाज, न चलने का आवाज, न बातें करना, न इस प्रकार से आना कि वाइब्रेशन हिल जावे, नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम घर से निकलते हो तब से, कमरे से निकलते हो तब से मन में ये रखो कि स्वयं भगवान आ रहा है मुझे पढ़ाने, मैं फरिश्ता पढ़ने जा रहा हूं। पूरे रास्ते में ये प्रैक्टिस करिए, ये मौका है हमें अपने आप को डिटैच करके चलने का, तो आप बहुत अच्छी अवस्था में बाबा के सामने आकर क्लास में मुरली सुन सकेंगे। तो ये है कि हम यज्ञ की, शांति की बनाए रखने में रक्षक रहे, मददगार रहे। आपस में मन मुटाव, अनबन, गुस्सा, बोलना नहीं, बात नहीं करना, देखने में ये डिस्टर्ब करने वाले कार्य नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म में अशांति फैलाने वाले कार्य है। हम ज्ञानी तू आत्मा बनकर एक दो के साथ बोले नहीं, एक दो के साथ अनबन, मनमुटाव, गुस्सा है ना, वो वायुमंडल को सामान्य बना देता है। कोई मेहमान आते हैं, हम झटपट बहुत शांति से उनको वेलकम करने लग जाते हैं, लेकिन उसके आधे घंटे पहले अंदर आपस में लड़ रहे थे, तो उनको शांति का अनुभव होगा? तो क्यों हम बनावट करते हैं अंदर बाहर? ये तो दूसरा हो गया ना। अब एक मेहमान के सामने, एक जिज्ञासु के सामने, एक वीआईपी के सामने, एक विजिटर के सामने अगर हम चार भाई बहने मिलके शांति से प्रेम से वेलकम कर सकते हैं, तो हम आपस में ब्राह्मण भाई बहने प्यार से नहीं चल सकते? क्यों हमें ऐसी अशांति की, गुस्से की, अनबन की बातें होनी देनी चाहिए? तो हम व्यक्तिगत, यहां हम जितने भी भाई बहने बैठे हैं, अगर हमें इस यज्ञ को संभालना है, तो हम व्यक्तिगत अपने प्राण ले कि एटलीस्ट हम गुस्से से बात नहीं करेंगे, हम शांति से आपस में चलेंगे, लड़ेंगे नहीं, हमारी आपस में अनबन नहीं। ठीक है, हरेक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है, कई बहुत उग्र है, गुस्सेल है, उनके साथ चलना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं कि चलो आप मिलके कोई काम नहीं करते हो, अपनी अपनी सेवा करो, लेकिन एक दो के प्रति शुभ भावना और मीठी दृष्टि रखो। वो तो हम कर सकते हैं, हमारी भावना नहीं बदले, हमारी दृष्टि नहीं बदले। कल दादी जी ने, बाबा ने हमें यही तो बात कही कि मन बुद्धि साफ, एक दो की बुराई का किचड़ा हम न रखे, नहीं तो हमारा मन ही अशांति के वाइब्रेशन फैलाएगा। मैं खुद ही अशांत हो जाऊंगी तो मुझे क्या फायदा है? दूसरे का नुकसान तो है ही, लेकिन पहला तो मेरा नुकसान है। इसलिए अंदर बाहर सच्चाई, सफाई, एक व्यक्तित्व की ओम शांति, माना ओम शांति। दुनिया सारी हमें किस नाम से पहचानती है? हाँ, ये कौन लोग है ओम शांति वाले? तो हैं हम शांत? ये हम रोज अपने से पूछे कि दुनिया सारी कहती है ओम शांति वाले, ओम शांति वाले, तो सचमुच हम शांति से जी रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं? 80-90% हम कर रहे हैं, 10% कहीं कुछ ऐसी बात होती है, उस समय शांति हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसे कमजोर हम क्यों बने? अब जबकि यज्ञ समाप्त होने पर आया है, हमारी सब दादियां फरिश्ता बन रही है, तो क्यों नहीं उनके होते होते हम सब शांति दूत बन जाएं, ताकि हम बाबा का कार्य, बाबा का यज्ञ शांति से चला सके। दूसरा, इस यज्ञ के लिए जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, स्थापना काल से लेकर आज तक, वो है इस यज्ञ की पवित्रता, जो दुनिया में और कोई संस्था में नहीं है और कोई धर्मों में नहीं। केवल एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ऐसा है जिसका सच्चा पक्का ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी पवित्र ही होगा। पवित्रता से इस यज्ञ की शुरुआत है। उस पवित्रता के कारण हमारी माताओं बहनों ने भाइयों ने कितने अत्याचार सहन किए, कितने सितम सहन किए। तो हम सब भाई बहने मिलकर ये दृढ़ता रखेंगे कि हम खुद पवित्र रहेंगे, हमारी वृत्ति दृष्टि हमारी भावनाएं भाव हम शुद्ध रखेंगे। कभी भी हमारा आपस में दैहिक भाव नहीं। बाबा कहते हैं ना कि देह अभिमान में आना, देहधारी को याद करना माना इस वायुमंडल को खराब करना, कहते हैं ना मुरली में बाबा। तो हम सब अपने ऊपर अटेंशन दें कि पवित्रता में हमारी कोई कमी न रहे, हमारे कर्म पवित्र, हमारी वृत्ति दृष्टि मन के सूक्ष्म भाव भावना इच्छाएं इंटरेस्ट सब शुद्ध। और इसलिए हम निरंतर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे कि जो ब्रह्मचर्य से पवित्रता हमने शुरू की है, हम संपूर्ण निर्विकारिता के लक्ष्य पर पहुंच के रहेंगे। बाबा कहते हैं आपकी मंजिल ऊंची है, विकार का कोई अंश वंश न रहे। ऐसी पवित्र पर्सनालिटी हो कि हमारी माताएं बहनें भाई एक दूसरे से सुरक्षित रहे, किसी की दृष्टि खराब ना हो एक दो के प्रति, तब हम यज्ञ रक्षक हैं। कि इस यज्ञ की पवित्रता जो विश्व प्रसिद्ध है, जो इसका फाउंडेशन है, इसको हम कमजोर नहीं होने देंगे। तब कहेंगे कि रक्षक है। इसलिए आज भी बाबा ने कितना पाठ पक्का कराया, कैसे देह भान से डिटैच रहो। मैं इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती हूं पढ़ती हूं पढ़ाती हूं, ये प्रैक्टिस। और धारणाएं नियम मर्यादा में फिर भी बाबा कहेगा कि बाबा की याद में चलो भोजन कर लो, लाचारी हालत है तो कोई 20-50 दिन भूखे रहना पड़े और लाचारी से आपको खाना पड़े, बाबा की याद में जो सात्विक हो वो खाओ। पर पवित्रता के लिए कोई अल्टरनेट नहीं दिया है बाबा ने। बाबा ने कहा चाहे कुछ भी तुम जान दे दो, झाड़ू लगाओ बर्तन साफ करो, लेकिन पवित्र बनाए। तो पहला सहयोग तो हम ब्राह्मणों का चाहिए ना, इस यज्ञ को इतना शुद्ध बना के रखें। बाबा कहते हैं कि कोई व्यक्त भाव से आवे आपको देखकर अव्यक्त बन जाए, कोई चंचल भाव से आवे लेकिन आकर उनके मन बुद्धि स्थिर और शांत बन जाए। अभी अभी परसों ही तो बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने यही तो कहा कि नवीनता क्या लानी है, हम तो नए नए साधन सेवा के बनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, नए नए चित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में नवीनता लानी है, अलौकिकता लाओ, अव्यक्त भाव लाओ। तो हम इस यज्ञ की पवित्रता जो गाई हुई है वो अंत तक सदा बनी रहे, उसमें अपना योगदान दे सकेंगे। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस यज्ञ की अखंडता बनी रहे, इसको कोई तोड़ न सके। हम भाई बहने कितने भी बढ़ जाएं, कितने भी सेंटर हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर तेरा मेरा नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम सब ये लक्ष्य रख लें कि हम तोड़ने का कार्य नहीं करें, जोड़ने का कार्य करें। एटलीस्ट हम तोड़ने की प्रवृत्ति में भागीदार नहीं बने, है ना। कई बार हम और कोई बातों के कारण नहीं, दुनिया में तो धन संपत्ति साधन जमीन जायदाद के लिए लोग लड़ते हैं, हम उसके लिए नहीं, कई बार सेवा के लिए हम आपस में संघर्ष में आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने हरेक को सेवा का जो विस्तार दिया है, एरिया दिया है, हम उस एरिया में सेवा करें, दूसरों पर आक्रमण नहीं करें, दूसरों का छीने नहीं। ये छीनना, आक्रमण करना, ये सेवा नहीं है। ये सेवा है, ये सेवा की रीति नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा है कि गलत रीति से सेवा करो, सेवा करो, लेकिन नियम मर्यादा विधि पद्धति पूर्वक सेवा करो। मनमत से सेवा नहीं, गलत साधनों से सेवा नहीं, गलत रीति से सेवा नहीं। तो हम हरेक का ये प्रयास रहे कि हम मिलके चलें, प्यार से संगठित होकर चलें। हमारे इस संगठन में एकता हो, एकता के लिए हम एक मत पर चलें, कि मैं श्रीमत पर चलूं। सामने वाली मनमत कर रही है, लेकिन मुझे श्रीमत नहीं तोड़ना है। ठीक है, एक गांव जाएगा, एक पाठशाला जाएगी, एक सेंटर जाएगा ना, बस। लेकिन हमें ग्रुप नहीं अलग अलग करने, विखवाद नहीं, क्योंकि बाबा ने, दादियों ने अब तक मिलकर इस यज्ञ को चलाया है, तो हमें भी मिल करके चलाना है। हमें विश्वास हो कि बाबा को मुझे जो देना है वो बाबा देगा ही, मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिलेगा ही, कोई कमी नहीं कर सकता है। देखने में चार गांव वो ले लेगा, बाबा मुझे और कुछ विशेष दे देगा। वो बाबा में, खुद के भाग्य में, खुद के कर्म में हमें विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम आपस में छीना झपटी करने लगते हैं। तो हम सब भाई बहने, हो सकता है डायरेक्ट आप ऐसा ना करते हो, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम तोड़ने में मददगार न बने, हम मिलके चलने में, जोड़ने में मददगार बने। ये हम अपना कि बाबा के खातिर, यज्ञ के खातिर हमें मिलके चलना है, तो यज्ञ हमारा अखंड बना रहे। बाबा तो अपना कार्य करा लेगा, आज एक के जगह दो सेंटर होंगे तो बाबा की सेवा तो बढ़ेगी, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि सेवा में मैंने अपना रोल कैसा नोट किया। संगम के इतिहास में मेरा पार्ट, मेरा रोल भी तो श्रेष्ठ हो, कि मेरे श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा का विस्तार हो, न कि लड़ झगड़ के चार सेंटर में बढ़ाऊं, सेवा तो बढ़ी लेकिन मेरा रोल तो गलत हो गया ना, वो हमें नहीं करना है। इसलिए बाबा क्यों हमें बार बार ये पाठ पक्का कराता है कि एक दो को रिस्पेक्ट दो, एक दो की मानो। अब हर जगह तो दादियां नहीं कहने आएगी ना, हर जगह तो बड़े नहीं पहुंचेंगे ना, हमें आपस में एक दो का मानना है, सुनना है। और ज्ञान तो स्पष्ट है ही कि श्रीमत के अनुरूप जो बातें हैं वो हमें कोई भी कहे वो माननी है, जो बातें श्रीमत के अनुकूल नहीं है उसमें न्यारा साक्षी रहना है, बस। लड़ना नहीं है, न्यारा साक्षी, क्योंकि हमें मुरली एक ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति है कि हमें श्रीमत हर बात की स्पष्ट मिलती, हम उस श्रीमत से किसी से भी कही हुई बात को वेरीफाई कर ले। अगर एक छोटी बहन या एक नया भाई भी अच्छी बात श्रीमत के अनुकूल कहता है तो मानने में क्या जाता है, हम स्वीकार करें। तो हमारा अपना ईगो, झूठा अभिमान बाबा के कार्य में, इस अलौकिक संबंध में हम मिक्स नहीं करें। अक्सर हम ब्राह्मण भाई बहनों के आपसी घर्षण संघर्ष का कारण यही है, झूठा अभिमान सही बात को स्वीकार नहीं करने देता है। आत्माभिमानी स्थिति पकड़कर चलने से हमें बहुत क्लियर राइट रॉन्ग समझ में आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे मेरे कारण से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से कोई सेंटर में टूटफूट होनी नहीं चाहिए, भल मैं त्याग कर दूं, स्थान बदल दूं, लेकिन मुझे तोड़फोड़ नहीं करनी। हमारे तरफ से बाबा का यज्ञ अखंड रहे। और इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं कि कारण नहीं बताओ, निवारण बताओ। चौथी बात है, हमें इस यज्ञ की सर्वश्रेष्ठता सदा सिद्ध करके बताने कि ये सामान्य यज्ञ नहीं है, ये सामान्य विद्यालय नहीं है। हम समझते हैं ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, ये हम समझते हैं, लेकिन वो मेरी चलन से सिद्ध होना चाहिए, वो मेरी चलन से सिद्ध होना चाहिए। दादियां सिद्ध कर रही है, समय आने पर यज्ञ सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा ही, लेकिन मेरी चलन से सिद्ध हो, लोग कहें कि सचमुच इस विद्यालय के भाई बहने क्वालिटी है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम दिन प्रतिदिन क्वालिटी बनते जाएं, रिफाइननेस लाएं, हमारा और अच्छा योग हो, और अच्छी तपस्या हो, और अच्छा व्यवहार हो, और अच्छी हमारी दृष्टिवृत्ति हो। और उसके लिए बाबा की बात हम याद रखें कि जैसे बाबा के लिए कहा जाता है, दादियों के लिए कहा जाता है कि बाबा को जिस किसी ने भी जहां भी देखा जब भी देखा विशेष ही देखा। बाबा कभी अपनी स्थिति में अपने व्यवहार में हल्के नहीं रहे, माना लूज नहीं रहे, कॉमन नहीं रहे। जिसने जब भी जहां भी बाबा को देखा बहुत ऊंची रॉयल दिव्य स्थिति में देखा। हम भी संगठन में एक दो के सामने दिव्य होके चले ऐसे नहीं, जहां कोई भी हमें न देख रहा हो उस समय हम क्या करते हैं वही तो हमारा चरित्र है। जब सब देखते हैं तब तो हर कोई फरिश्ता हो जाता है, लेकिन जब कोई भी नहीं देख रहा हो उस समय मैं क्या करती हूं, मेरी वृत्ति दृष्टि क्या है, वो मेरा चरित्र है। इसलिए हम अकेले हैं, संगठन में हैं, ज्ञानियों के साथ है, अज्ञानियों के साथ है, लौकिक में है, अलौकिक में है, सेंटर में है, घर में है, रात में है, दिन में है, गांव में है, शहर में है, कहीं भी हम हैं, हम दिव्य हैं, अलौकिक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, यही हमारा स्वरूप है। तो हम इसकी क्वालिटी को विश्व में प्रसिद्ध कर सकेंगे। बाबा कहते ना, अभी तो लोग ऐसा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, फलानी संस्था वाले भी बहुत अच्छा काम करते हैं। नहीं, बाबा कहते ना, यही है, यही है। हाँ, वो तब हम सिद्ध कर सकेंगे जब हम एक एक बाबा के बच्चे क्वालिटी ब्राह्मण बनेंगे। कच्चे ढीले ढाले ऐसे नहीं, पक्के वारिस बनना होगा। क्वालिटी माना वारिस, और बाबा जब वारिस की बात करते हैं हम दूसरों के तरफ देखते हैं कि कौन वारिस बने, ऐसा है कौन वारिस बने। अरे हम बनेंगे ना, और कौन बनेंगे, हम वारिस बनेंगे। इतने सालों से चलने वाले हम वारिस नहीं बनेंगे, दूसरे बनेंगे। हमें वारिस बनना है। हमारा तन मन धन, मन वचन कर्म श्रीमत पर ही उपयोग होगा। हमें क्वालिटी बनना है, वारिस बनना है। बाबा कहते हैं ना कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो अपना देवत्व प्रत्यक्ष करो, लोग स्वीकार करें कि ये वही कल्प पहले वाले देवी देवता है। आपको देखे और बाप याद आवे, बाबा के शब्द याद करो, कितने अच्छे अच्छे महावाक्य, आप में बाप दिखाई दे, लोग कहें ये अल्लाह लोग हैं। इसलिए हम ऐसे तपस्वी बने, योगी बने, दिव्य गुणधारी बने कि जहां हम रहें लोग महसूस करें कि हमारे बीच में ये एक ऐसा तपस्वी है जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं ना कि ये एक ऐसी पुण्यशाली आत्मा है, उसके कारण हमारी नाव तर गई, हम डूबे नहीं। तो वो हम लोगों के लिए कहें कि ये ऐसे तपस्वी हमारे बीच में बैठे हैं, इसके कारण हम सलामत रहेंगे। ऐसा सर्टिफिकेट परिवार वाले, जहां आप नौकरी धंधा कर रहे हैं वो, जिस सेंटर में हम हैं वे, मधुबन में हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो कौलीति ब्राह्मण, कौलीति योगी हम कहे जे। और पांचवी बात कि इस यज्ञ की संपन्नता सदा बनी रहे। हम हजारों लाखों ब्राह्मणों के होते हुए इस मधुबन बेहद यज्ञ में कभी किस बात की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिसके इतने बच्चे हों उस मां बाप को क्या चिंता कहां से पैसा आएगा। तो हम बाबा के बच्चे इतने सहयोगी हों कि हमारे यज्ञ की संपन्नता के सामने कभी कोई मुंझ नहीं आवे, कभी कोई आर्थिक साधन सुविधा की दृष्टि से कोई भी तकलीफ या सोचने की बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी सुविधाएं हम बना रहे हैं वो हमारे अपने लिए, हम अपने लिए अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं, हम कोई बाबा पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपना सफल कर रहे हैं। इसलिए निरसंकल्प होकर एक धक से यज्ञ के हर कार्य में हम ऐसे साथी बने, सहयोगी बने कि कितना भी बड़ा कार्य हो हम सहज कर सके। ये विश्वास हम रखें कि बाबा हमारा लेकर बैठा नहीं रहेगा, बाबा हमें अनेक गुना रिटर्न करता है। भगवान किसी का लेकर रखता नहीं है, वो अनेक गुना रिटर्न करता है। आपके भाग्य में ऐसी ताकत भरेगा, आपके कर्म में ऐसी ताकत भरेगा, आप बाबा को 100 देंगे, बाबा आपको लाखों देगा। पर ये विश्वास और निरसंकल्प और अभिमान नहीं करने का गुप्त से, गुप्त माना हम वर्णन नहीं करते रहे सब जगह। हाँ ठीक है, जो हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, निमित्त है, उनको बताएं। सारे गांव में वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि ये माइक मैंने लेके दिया है, ये कैमरा है ना मैंने लेके दिया है, ये पंखा है ना सेंटर में बहुत अच्छा है ना मैंने लाया था, ऐसा हमें वर्णन करने की जरूरत नहीं। हाँ जो निमित्त है, बड़े हैं, दादियां हैं, हम उसको बताएं, ये हमारा फर्ज है। और निरसंकल्प, बाबा कहता है ना कि बुद्धि में आना नहीं चाहिए कि कब तक करना है, कितना करना है, अरे अंत तक करना है, ये तो बेहद का काम है, भगवान का काम है, वो कोई मेरी कैपेसिटी पर चल रहा है क्या? हम कर सकते हैं दिल से करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, कोई कंपैरिजन करने की बात नहीं है, कोई संकल्प चलाने की बात नहीं है, जितना करो पर दिल से प्यार से जिगरी करो। तो आपके इतने सहयोग में भी इतनी ताकत होगी कि वो बाबा का इतना काम कर देगा। तो यज्ञ जो गाया हुआ है कि richest in the world, बाबा के यज्ञ में भंडारे भरपूर, भंडारी भी भरपूर। हम किसी व्यक्ति को देखकर सहयोग नहीं देते हैं, हम बाबा को देख के देते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है जिस सेंटर में हम पढ़ते हैं, पढ़ाई की सुविधा लेते हैं, पालना की सुविधा लेते हैं, हम उतना दिल से सहयोग दें। और हर सेंटर के भाई बहने मधुबन यज्ञ के लिए जवाबदार है, क्योंकि इस ये बेहद का यज्ञ है तो ये सेंटर्स है, इसलिए इस बेहद के घर को भरना, बेहद के सेवा कार्यों को करना हम सबकी जवाबदारी। इसमें संकल्प न चलाएं। हम मधुबन आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, पालना लेते हैं, तो वो सारा भरपूर भर तो हमें ही तो करना है। अब बहने जब कहेंगी तो कई भाई बहने संकल्प चलाते, बहने मांगती है, बहने मांगने की बात नहीं, पर यज्ञ हवा में तो नहीं चल रहा है ना, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो खर्च तो हो रहा है ना, तो हम सबको मिलकर के ही तो करना है। और बाबा ने इशारा दे दिया है, अगर आप सब नियमित मुरली क्लास करते हैं और बाबा के जितने भी संदेश आते हैं वो सुनते हैं, तो अधर कुमार भाइयों की भट्टी में जो संदेश आया था दादी गुलजार जी के द्वारा, बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि स्थूल और सूक्ष्म जो भी खजाने हैं, धन साधन के खजाने, चाहे बाबा से जो ज्ञान गुण शक्ति के खजाने मिले हैं, वो सफल करो और सफलता मूरत बनो, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, परिस्थितियां ऐसी आ रही, तो हमारा, हम ब्राह्मण भाई बहनों का ये फर्ज है कि बाबा के हर घर को, बाबा के इस घर में कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो। हम सब खड़े हैं दिन रात बाबा के कार्य में साथ देने वाले, इसलिए सीजन में भी बाबा ने गृहस्थी भाई बहनों को ये कहा था कि परमात्मा साथी बनना है और परमात्मा कार्य में साथ देना है, परमात्मा साथी बनना है, कंबाइंड स्वरूप सदा रहना है और परमात्मा के कार्य में साथ देना है, मददगार बनना है। तो मैं समझती हूं कि हम सब भाई बहने अगर ऐसे चलेंगे, सोचेंगे, एक दो को ऐसी प्रेरणा देंगे, तो हम अपने हर सेंटर को, जोन को, यज्ञ को निर्विघ्न सहज ही बना सकेंगे, जो बाबा की चाहना है। ओम शांति।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे, इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व की जय, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है, ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।